ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा।
100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनटीपीसी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उसे वर्तमान दिशा निर्देशों से छूट देने को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब एनटीपीसी अपनी सहयोगी इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश कर सकेगी। श्री वैष्णव ने बताया कि समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों पर लागू वर्तमान निवेश दिशा निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल को विशेष छूट को अभी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50% का लक्ष्य पार कर लिया है और भारत COP26 के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना का प्रस्ताव पारित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना करता है जिनके अथक प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सफल मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 81,00,000 टन हो गया है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में फलों सब्जियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 75,00,000 टन और दूध का उत्पादन बढ़कर 102,00,000 टन हो गया है।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार डेटाबेस की सटीकता और सत्यनिष्ठता बनाए रखने के लिए मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करने के सक्रिय कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने आधार नंबर निष्क्रिय करने के लिए 1,55,00,000 मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए भारत के महापंजीयक के साथ समझौता किया है। इजरायली अति रूढ़िवादी शास पार्टी ने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से हटने की घोषणा की। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शास पार्टी ने धार्मिक छात्रों के लिए भविष्य में सैन्य भर्ती से छूट की गारंटी न देने के विरोध में सरकार छोड़ी है। गठबंधन सरकार से शास पार्टी के अलग होने से नेतन्याहू सरकार संकट में घिर गई है। देश में पहले ही कई विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही अल्पमत सरकार का नेतृत्व करना उनके लिए मुश्किल होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत को श्रृंखला में 1-0 की बढ़त मिल गई है। दोनों टीमों के बीच दूसरा 1 दिवसीय मुकाबला शनिवार 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।